नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए 11,700 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 सीजन के लिए खोपरा के एमएसपी में 445 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। कोयला संपर्क नीति कोल सेतु में सुधारों को भी मंजूरी दी। सिक्किम विधानसभा ने 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में वाहन प्रदूषण से निपटने की रणनीति तैयार करने के लिए आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 234 रन से हराया और भारत स्क्वाश विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जनगणना 2027 दो चरणों में कराई जाएगी।
सेंसस दो फेजेस में होगा। फेज वन में फोकस रहेगा हाउसहोल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है। दैट विल बी दी बेस फॉर फेज टू, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा भारत के कानूनों के हिसाब से।
श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने कोयला लिंकेज नीति कोल सेतु में सुधारों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
2016 में कोल सेतु के माध्यम से जो नॉन पावर सेक्टर्स हैं, उसको एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड से ऑक्शन करने की व्यवस्था लाई गई थी। अब उसमें एक सेकेंड बड़ा रिफॉर्म किया गया आज। अब इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंड यूज, एनी यूजर कैन पार्टिसिपेट इन द कोल सेतु विंडो। अब कोल के एक्सपोर्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है, इससे बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इंडस्ट्री में।
श्री वैष्णव ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी अनुमोदन कर दिया है।
आज कोपरा के लिए एमएसपी का अप्रूवल हुआ है। मिलिंग कोपरा का 12,027 पर क्विंटल रखा गया है एंड फॉर बॉल कोपरा द प्राइस विच इज अप्रूव्ड इज 12,500 रुपीज पर क्विंटल।
श्री वैष्णव ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से नारियल उगाने वालों को न केवल बेहतर मूल्य मिलेगा बल्कि किसानों को कोपरा उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। सिक्किम विधानसभा ने राज्य के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने का प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन ने राज्य सरकार की गठित उच्च स्तरीय समिति की हाल में सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों का अनुमोदन किया। इस फैसले से इन 12 समुदायों के लोगों के लिए अनुसूचित जनजाति के निर्धारित लाभ और अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक मांग पहले हिस्से और विनियोग विधेयक 2025 पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश किया। इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवाओं के लिए भारत की समेकित निधि से अतिरिक्त व्यय के लिए भुगतान और विनियोजन अधिकृत किया जाएगा। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार देश में ही विमान विनिर्माण शुरू करने जा रही है। श्री नायडू ने कहा कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड रूसी विमान कंपनी सुखोई के साथ संबंधित प्रौद्योगिकी हासिल करने का प्रयास कर रही है। आज लोकसभा में विमान किराया विनियमन संबंधी प्रस्ताव के जवाब में नागर विमानन मंत्री ने कहा कि विमानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। श्री नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार के पास असाधारण परिस्थितियों में विमान किराए पर सीमा लागू करने का अधिकार है ताकि यात्रियों को अप्रत्याशित किराए का सामना न करना पड़े।
हाल ही में हमने इंडिगो संकट के दौरान भी परिचालन क्षमता में कमी देखी। कई उड़ानें रद्द हुई, कई रूट ऐसे थे जहां एयरलाइन उड़ान नहीं भर पा रही थी जिस कारण क्षमता में कमी हो गई। ऐसे में फिर से ये देखा गया कि अगर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो हवाई किराए में वृद्धि हो सकती है। हमने तुरंत हस्तक्षेप किया, एक आदेश जारी किया और इस बार हमने दूरी के आधार पर श्रेणियां बनाई है।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने तिरुपरानकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में हिंदुओं को दिया जलाने की अनुमति नहीं देने के लिए तमिलनाडु सरकार की आलोचना की है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ये मामला उठाते हुए श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि स्टालिन सरकार ने जानबूझकर न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन के आदेश की अवहेलना की। प्रसार भारती ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और ओटीटी वेव्स प्लेटफॉर्म पर सामग्री प्रसारित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई निर्मित त्रिलोक नामक संगीत बैंड के साथ कोई समन्वय नहीं किया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज राज्यसभा में ये जानकारी दी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहन प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि इस विशेषज्ञ समिति में शिक्षाविद, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वाहन अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये समिति वाहन प्रदूषण पर अंकुश के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उपायों की सिफारिश करेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस महीने की 15 तारीख को समिति की पहली बैठक होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल सहित 8 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। एक रिपोर्ट।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपना काम शुरू कर चुके हैं और अगले वर्ष फरवरी में मतदाता सूची जारी होने तक इन राज्यों में प्रत्येक सप्ताह के 2 दिन मौजूद रहेंगे। आयोग ने बताया कि विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक राजनीतिक दलों के राज्य स्तर और जिला स्तर के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इन राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और जिला चुनाव अधिकारियों के साथ भी इनकी बैठक होगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी चुनाव प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। ये पर्यवेक्षक SIR प्रक्रिया पर निगरानी रखेंगे ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित ना रहे और किसी भी अवैध मतदाता का नाम सूची में ना रहने पाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 10 माओवादियों ने समर्पण कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें 6 महिला माओवादी भी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 10 माओवादियों ने एक AK-47, 2 SLR राइफल, 1 स्टेन गन, 1 BGL लॉन्चर के साथ आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण करने के बाद आज सुकमा स्थित पुनर्वास केंद्र में पौधारोपण भी किया। कल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव डॉ नीना मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि जॉर्डन के अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा पर होंगे। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है।
इंडिया एंड जॉर्डन शेयर वार्म एंड फ्रेंडली रिलेशंस।
भारत और जॉर्डन के बीच आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध है। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत जनसंपर्क स्थापित है। भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध भी है, जिसमें भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 2,80,00,000 है।
डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने बताया कि यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री इथियोपिया जाएंगे। श्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 17 से 18 दिसंबर तक ओमान में होंगे। श्री चटर्जी ने कहा कि ओमान के साथ भारत के विशेष व्यापारिक संबंध हैं। यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। भारत ने आशा व्यक्त की है कि थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर जारी झड़पों के बीच यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल प्रहविहर मंदिर और संबंधित संरक्षण केंद्रों की पूरी सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोनों देशों से बातचीत और शांति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संबंधी अंतर सरकारी समिति का 20वां सम्मेलन आज नई दिल्ली के लाल किला में संपन्न हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि संस्कृति को सामूहिक विरासत के रूप में देखने की भारत का सभ्यतागत दृष्टिकोण संस्कृति की रक्षा विश्व की रक्षा सिद्धांत से प्रेरित है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने वीर सावरकर को एक सशक्त लेखक के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आधारशिला रखने वाला नायक बताया। सावरकर की कविता संग्रह के 115 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप के श्री विजयपुरम में आयोजित समारोह में श्री शाह ने कहा कि सावरकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और इसे बच्चों के साथ साझा किया जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विवेकपूर्ण उपयोग स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकता है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ औषध और जीवन विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एहतियाती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के निर्यात से एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइडर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पंजीकृत कारीगरों की ऑनलाइन बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए अमेजन सेलर सर्विस के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत विश्वकर्मा कारीगरों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल करने में सुविधा मिलेगी। वहीं मंत्रालय आवश्यक अनुमोदन पंजीकरण और मंजूरी प्राप्त करने में सहयोग करेगा। और अब बात खेलों की। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के पहले मुकाबले में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 234 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 433 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी को शानदार 171 रन की शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से 14 दिसंबर को होगा। चेन्नई में स्क्वाश विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से जोशना चिनप्पा ने दक्षिण अफ्रीका की टीगन रसल को, अभय सिंह ने डिवाल्ड वैन निकेर्ख को और अनहा सिंह ने हेलेवार्ड को शिकस्त दी। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने ब्राजील को 4-0 से हराया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भीषण शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और ओडिशा में 14 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में सोमवार तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए 11,700 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के MSP में 445 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। कोयला संपर्क नीति कोल सेतु में सुधारों को भी मंजूरी दी। सिक्किम विधानसभा ने 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में वाहन प्रदूषण से निपटने की रणनीति तैयार करने के लिए IIT मद्रास के प्रोफेसर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 234 रन से हराया और भारत स्क्वाश विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।